ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व शफीना محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन के इल्म के लिए हमारा इंतखाब फरमाया। सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन होनी चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो दरअसल अल्लाह का वो फ़ैसला है जो हमारे सिलसिले में अमल कर रहा है, अपना काम कर रहा है। कोई आदमी अपने इख्तियार से कुछ नहीं करता जब तक कि अल्लाह तबरक ताला उसके मुतालिक जो है फ़ैसला न फरमाए। वमा तशाउन इल्ला यशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहता है वही तुम चाहते हो। और वल्लज़ी खलक़ नहीं वो रब्बो का यखलो को माँ यशा व यख्तार माँ कान लहुमुल खियारा, कि तुम्हारा रब जिस चीज़ पैदा कर जिससे जो चाहे काम लेता है, तुम्हारा अपना इख्तियार कोई नहीं चलता। तो हकीकत तो ये है कि अपने दीन का इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमारा इंतखाब फरमाया। ये पहला सबसे बड़ा इनाम है जो इस निस्बत से अल्लाह तबरक ताला की तरफ से हमारे लिए वजूद में आया। आप जब पढ़ने के लिए चले हैं अपने घर से और आपका दाखला हुआ है मदरसे में, आपके घर में, आपके ख़ानदान में, आपकी बरादरी में, आपकी बस्ती में, आपके मोहल्ले में आपके हम उम्र और भी बच्चे थे, लेकिन उनमें से अल्लाह तबरक ताला ने आपको चुना और जहां आपने तालीम हासिल किया कर रहे हैं वहां तक अल्लाह तबारक व ताला ने पहुंचाया। ये अल्लाह तबरक ताला का बहुत बड़ा इनाम है। फिर हजरात असातिज़ा जो इस वक्त तालीम व तरबियत की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, वो ये भी सोचें कि हम जब पढ़ने के लिए दाखिल हुए थे हमारे साथ बहुत सारे हमारे रफ़क़ाए दर्स थे, जो जो हम आगे बढ़ते गए उनमें बजाय इजाफा होने के कमी आती गई, वह कुछ छटते गए, कम होते गए, यहाँ तक कि जब आपके इन उलूम से फरागत का यानी निसाब की तकमील का वक्त आया तो शुरू में आपके साथ जितनी तादाद थी उसमें से काफ़ी कम हो गए। वह आखिर तक पहुँचने की सआदत अल्लाह तबरक ताला ने आपको अता फरमाई। फिर फरागत के बाद आपके बहुत से साथी वो होंगे जो सूझबूझ में और इल्म के एतबार से, जहानत के एतबार से, फतानत के एतबार से, कुव्वत हाफ़ज़ा के एतबार से आपसे बड़े हुए थे, लेकिन वो फरागत के बाद इस लाइन में लगने के बजाय दूसरी लाइन में चले गए। गोया इस इल्म दीन की इशाअत की खिदमत के लिए अल्लाह तबरक ताला की तरफ से उनके हक़ में फ़ैसला नहीं हुआ, अल्लाह तबरक ताला ने आपको गोया इस लाइन में लगाया। गोया ये बहुत बड़ी सआदत हुसूल इल्म के बाद अल्लाह ने अता फरमाई कि इस इल्म की इशाअत की खिदमत के लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से आपको चुना गया। और ये तलबा जो हैं गोया उनको तो इस पढ़ने के लिए चुना ही गया है, और जो है इल्म दीन के इस मुकर्रर निसाब के आखिरी सालों में पहुंचा दिया है। आइंदा एक वक्त आएगा कि वो इससे फरागत हासिल करेंगे। फरागत का मतलब ये है कि कोई उलूम की तकमील नहीं, एक मुकर्रा निसाब है जिसकी ये तकमील करेंगे। उलूम तो ऐसा दरिया है कि जिसकी तकमील का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा दिया था, वक़ुर रब ज़िदनी इल्मा। ये नबी आप गोया ये दुआ अल्लाह तबारक व ताला से मांगते रहिए कि हमारे परवरदिगार तो इल्म के एतबार से मुझ में ज़्यादती अता फरमा, यानी इल्म में तरक्की अता फरमा। आप पर वही का सिलसिला जारी है, वही आ रही है, और आप सैयदुल अंबिया हैं, और आपको अल्लाह तबारक ताला की तरफ से जो उलूम अता किए गए वो उनका हाल ये है कि उती तो इल्म अव्वलीन वल आखरीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इरशाद है कि अगलों और पिछलों का मुझे इल्म दिया गया, उसके बावजूद इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने आपको ये हुक्म दिया कि हर वक्त अपने इल्म के अंदर तरक्की की दुआ करते रहिए। गोया ये फरागत का मतलब ये नहीं है कि अब आपको इल्म के हासिल करने की ज़रूरत नहीं रही, बल्कि हम इल्म के उसके बाद भी मोहताज हैं। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ की ज़िंदगियों का हम मुताला करते हैं तो अपनी मौत की घड़ी तक, ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक अपने इल्म में इजाफे और ज़्यादती के अंदर लगे रहे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक लिखा है कि आपकी जब वो बीमारी जिसमें आपका इंतकाल हुआ, मर्जुल वफात में आप मुब्तला थे, इब्राहिम इबन जराह ये भी मशाइख अनफिया में से हैं, फरमाते हैं कि मैं उनकी इयादत के लिए हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये बतलाओ कि रमिय जिमार आदमी कैसी हालत में करेगा, सवार होने की हालत में या पैदल। ये कहते हैं मैंने जवाब में अर्ज किया सवार होकर, कहा अख्ता था। फिर कहा मैंने जवाब में अर्ज किया कि पैदल, तो कहा अख्ता था। और फिर खुद ही इरशाद फरमाया हर वो रमी जिसके बाद दूसरी रमी है वो तो आदमी पैदल करेगा, और जिसके बाद दूसरी रमी नहीं है वो सवार होने की हालत में। कहते हैं उसके बाद मैं वहाँ से उठकर वापस जाने के लिए लौटा, अभी सदर दरवाजे तक पहुँचा नहीं था कि रोने वालियों की आवाज़ सुनी, मालूम हुआ हजरत इमाम का इंतकाल हो गया। कहा मुझे उनकी हिर से इल्म के ऊपर ताज्जुब हुआ कि गोया मौत की आखिरी घड़ी में भी उनका जहन उसी में लगा हुआ था। गोया इल्म की तलब ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे अकाबिर के यहाँ भी इसी चीज़ का एहतमाम। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक है, इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि आपकी रूह किस तरह कब्ज़ हुई। कहा मैं तो मुकातब का एक मसला सोच रहा था, मेरी रूह कब कब्ज़ हुई मुझे पता ही नहीं। तो गोया इस मौत की हालत में भी उनका दिल, उनका जहन इसी में लगा हुआ है। तो हमारा गोया हमारी ये तलब इल्म की ऐसी होनी चाहिए कि वो मौत तक ख़त्म नहीं होनी चाहिए। हजरत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह तो दारुल देवबंद के सबसे पहले सदर मुफ्ती हैं। उनके मुतालिक हकीमुल इस्लाम हजरत क़ारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि उनकी वफ़ात का वक्त जब करीब वफ़ात हुई तो देखा कि एक इस्तिफ्ता उनके हाथ में था जो उनके सीने के ऊपर पड़ा हुआ था मौत के बाद। गोया वो आखिरी हालत में भी उसी इस्तिफ्ता को पढ़ रहे थे, मौत आई तो उनके सीने पर पड़ गया। गोया आखिरी मशगला भी यही था। तो हमें तो ये इल्म के तलब के इस सिलसिले को जारी रखना है, और इसीलिए पूछा गया था गालिबन हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह या किसी और से कि इल्म की तलब का ज़माना कौन सा। तो कामिनल महदिल अल्लाह, वो बच्चा जो है वो वहाँ पाए इसमें होता है पालने में जिसमें उसको झूला दिया जाता है, वहाँ से लेकर के लहद यानी कब्र तक। गोया तलब इल्म और हुसूल इल्म का सिलसिला ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक जारी रहना चाहिए। आदमी अपने आप को किसी हालत में भी ये ना समझे कि मैं फारिग हो गया। ये फारिग तहसील बोलते हैं, उसका मतलब यह है कि एक जो है मुकर्रा निसाब है वो पूरा किया, वरना हुसूल इल्म वो तो जारी है। कुरान पाक में अल्लाह तआला ने सबसे पहली जो आयतें उतारी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम, ये दो इक़रा है। तो पहले इक़रा के मुतालिक तो बतलाया जाता है कि ये नाखानदा का इक़रा है, यानी जो पढ़ा नहीं उसको कहा जा रहा है इक़रा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, اور اس کے بعد دوسرا اقرا، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. فراغت کے بعد بھی پڑھائی کا سلسلہ، علوم کی حصول تحصیل کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے، جب تک کہ تمام علوم کی معتد بھی کتابوں کا آدمی مطالعہ نہ کر لے، وہاں تک علم کے اندر اس کو کوئی جو ہے معتد بھی صلاحیت حاصل نہیں ہوتی. تو یہ دوسرا اقرا کا اساتذہ کے لیے دوسرا اقرا کا سلسلہ چل رہا ہے، اور طلبہ کے لیے جو ہے پہلے والا اقرا چل رہا ہے. تو بہرحال یہ پڑھائی کا ہم کیسا کرتے ہیں، فراغت ہوئی گویا اب ہمیں اب کچھ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے اکابر جو ہیں حضرت علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس زمانے میں وہ اپنے مرض الوفات میں مبتلا تھے، دیوبند میں آپ کا مکان تھا مولا خانقاہ کے اندر، تو اس زمانے میں ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں دیوبند کے اندر یہ افواہ پھیلی کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. کا ایک دم سن کر دھچکا لگا، وقت ایسا تھا ابھی رات ختم ہوئی نہیں تھی، تو ہم اس انتظار میں رہے کہ صبح صادق ہو اور نماز کیونکہ ہم فارغ ہو کر کے جائیں. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد کا سب وہاں حضرت شاہ صاحب کے مکان پر پہنچے. حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور بھی تمام اکابر اساتذہ دارالعلوم کے تھے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال نہیں ہوا، خبر غلط تھی، کا بڑی مسرت ہوئی. پھر ہم اس کمرے میں پہنچے جس میں حضرت شاہ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں آرام فرما رہے تھے، بیماری کے ایام گزار رہے تھے. تو دیکھا کہ اس چارپائی چوکی جس کے اوپر آرام ہوا کرتا تھا، سامنے تکیے کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے اور آپ چار زانوں بیٹھے ہوئے جو ہے اور اس کے مطالعے میں مشغول ہیں. روشنی ابھی کم ہے چونکہ ابھی سورج طلوع ہوا نہیں تھا، اس لیے جھک کر مطالعے میں مشغول ہیں. کہیں منظر دیکھ کر کے حیرت کے ساتھ ساتھ اور استعجاب کے ساتھ ساتھ ہم کو افسوس بھی ہوا کہ اس خطرناک بیماری کی حالت میں حضرت کتاب کے مطالعے میں مشغول ہیں. اب کون اس پر حضرت سے کوئی بات عرض کرے؟ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے گویا اس کے ساتھ جو ہے ان سے عرض کیا، حضرت کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہے. کہا کہ وہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے نظر سے گزرا نہ ہو اور آپ نے حل نہ کیا ہو، اور پھر اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی تھا بھی تو اس کے لیے کون سی اتنی جلدی کی بات تھی کہ آپ جو ہے اس کتاب کو لے کر اس کے مطالعے میں مشغول ہیں. ہم خدام موجود تھے، حکم دے دیتے، ہم کتاب سے دیکھ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے. اس بیماری میں، اس سخت بیماری میں آپ اس طرح کتاب کے مطالعے میں مشغول ہیں، یہ آپ کی زندگی ایک امانت ہے امت کے لیے. تو اس پر حضرت شاہ صاحب کا تھوڑی دیر تک ایسے ہی دیکھتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا مولا صاحب یہ بھی ایک روگ ہے جو مجھ کو لگا ہوا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم کو بھی کتاب دیکھنے کا روگ لگ جانا چاہیے. جب تک کہ طلب علمی کے زمانے میں کتاب کے ساتھ ایسی مناسبت پیدا نہ ہو جو آدمی جس کو کتاب کے بغیر نہ چلے، تب تک جو ہے اس کے متعلق گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ گویا یہ آگے علمی اعتبار سے کچھ کارنامہ انجام دے سکتا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامل و مکمل نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ نہیں، ابھی ہماری طلب کا سلسلہ جاری ہے. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ایک مرتبہ فرمایا الحمدللہ اگر اسلامی حدود سے متعلق ساری دنیا کے اوقلا مل کر آ کر میرے سامنے اعتراضات پیش کریں تو میں دو منٹ میں ان کو خاموش کر سکتا ہوں، لیکن الحمدللہ میں یہ کہوں گا کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، علماء کی شان تو بہت بڑی ہوا کرتی ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں علم کے اندر یہ چیز ہمیشہ مستعد رہنی چاہیے. آج کل یہ ہو گیا کہ دو چار لفظ ہم نے پڑھ لیے، اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، آگے جو محنتیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. اسی لیے علوم کے اندر وہ ترقیاں اور وہ باقی باتیں جو اسلاف کے اندر پائی جاتی تھی اس میں کمی آ گئی. آج مدرسے والے تلاش کرتے ہیں پڑھانے والوں کو کہ اس کی ضرورت ہے. وہ کمی جو آئی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ فراغت کے بعد یہ سلسلہ جو باقی رہنا چاہیے اور وہ دوسرے والا اقرا آگے بڑھنا چاہیے، اس میں کمی آتی جا رہی ہے. بہرحال ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو نسبت عطا فرمائی، اس نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری محنت اور توجہ کے ساتھ इल्म को हासिल करने के करते हुए अमल का भी अहतमाम करें। अमल भी उसी वक्त तलबा को आम तौर पर शैतान और नफ्स ये धोखा दिया करता है, कभी क्या जल्दी, अभी तो तुम्हारे तालिब इल्मी का ज़माना है, फरागत के बाद अमल की तरफ तवज्जो करेंगे। हालांकि हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हालात को हम पढ़ते हैं तो उनका मिजाज तो ये था, जो चीज़ सुनी बस उसी वक्त उस पर अमल का अहतमाम। और हजरत सहाबा ही नहीं बल्कि आपके बाद उनके बाद जो ताबीन तबे ताबीन अइमा मुज्तहिदीन अइमा मुहद्दिसीन का जो ज़माना आया उनमें से हर एक का एक मिजाज था, वो यही था कि जो पढ़ा पहले उसके ऊपर अमल करो। चुनांचे आपने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात के अंदर पढ़ा होगा कि वो जो चीज़ पढ़ते थे उस पर अमल का अहतमाम करते थे। इमाम मोहम्मद इब्ने हम्बल के मुतालिक है, फरमाते हैं जो हदीस भी मैंने पढ़ी उस पर अमल का अहतमाम किया, यहाँ तक कि मैंने जब ये पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगी लगवाई है, हिजामा किया है और सींगी लगाने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत दी, तो मैंने भी सींगी लगवाई, हिजामा कराया और हिजामा करने वाले को उजरत दी। हालांकि हिजामा एक तरीके इलाज है तो बवक्त ज़रूरत इख्तियार किया जाता है, लेकिन हदीस पर अमल के शौक़ में उन्होंने ये भी किया। तो हकीकत तो यह है कि इसका अहतमाम हो अमल का। आजकल ये हो गया कि हम इल्म हासिल करके जो है उसी पर फख्र करके बैठ गए हैं, अमल का अहतमाम नहीं करते। हालांकि इस्लाम में इल्म बराए इल्म नहीं बल्कि इल्म बराए अमल है, यानी इल्म खुद मकसूद नहीं बल्कि इल्म इसलिए सीखा जाता है ताकि आदमी उस पर अमल का अहतमाम करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआओं में दो दुआएं हैं, एक तो है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया और दूसरी है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन इल्मिन ला यन्फा, या अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, और दूसरी है कि मैं इल्म गैर नाफे से तेरी पनाह चाहता हूँ। इल्म नाफे कौन सा? इमाम गजाली रहमतुल्लाह अली के एक शागिर्द उनकी खिदमत में रहे मुद्दतों, इल्म हासिल करने के बाद जब वापस जाने लगे तो उन्होंने दरख्वास्त की, हजरत इस तवील ज़माने में आपकी सोहबत में रहा, बहुत कुछ आपने अता फरमाया हासिल भी किया, आप कुछ मुख्तसर अंदाज में नसीहत कर दीजिए। उन्होंने एक तहरीर लिख करके दी अय्योहल वलद, जो हजरत मौलाना आशिकला साहब मेरठी रहमतुल्लाह अली ने इमाम गजाली रहमतुल्लाह अली का ख़त इस नाम से उर्दू में उसका तर्जमा भी किया है, तो उसमें जो ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें थी उसकी तरफ उन्होंने मुतवज्जे किया, उसकी निशानदेही फरमाई। एक बात इल्म नाफे की अलामत के तौर पर यह बतलाई कि जो इल्म आपको दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी से नहीं बचा सकता वो आखिरत में आपको अल्लाह के अजाब से नहीं बचाए। अगर आपका इल्म दुनिया में आपको मासी से रोक रहा है तो गोया ये अलामत है इस बात की कि इल्म नाफे है, और अगर नहीं तो फिर आपको अपनी खबर लेनी चाहिए, जायज़ा लेना चाहिए। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि इसी तलब इल्मी की ज़माने के अंदर हमें उन उलूम के ऊपर अमल का अहतमाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी और इत्तिबा अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए, और जो तलब इल्मी के ज़माने में उसका अहतमाम करता है अल्लाह तआला उसको इल्म से नवाजने के साथ साथ उसके उलूम से उसको भी फ़ायदा पहुँचाते हैं और अल्लाह अपने दूसरे बंदों को भी उसके उलूम से फ़ायदा पहुँचाते हैं। तालीमुल मुतालिम के अंदर लिखा है कि एक जगह से दो तालिब इल्म, दो नौजवान जो हैं इल्म हासिल करने के लिए अपने वतन से दूसरे इलाके में गए सफ़र करके, और चंद साल रह करके जब वापस आए दोनों ने एक ही किस्म के असातिज़ा से इल्म हासिल किया था, लेकिन उसके बाद जब वापस आए तो देखा एक उनमें से कामिल व मुकम्मल फ़कीह है और दूसरा जो है महरूम है, खाली है। उन्हें वहाँ के उलमा ने इस पर गौर किया कि आखिर ये फ़र्क क्यों, जबकि दोनों ने एक साथ इल्म हासिल किया, असातिज़ा भी यकसां है सब कुछ। तो मालूम हुआ कि जिसको जो फ़कीह कामिल था वो इल्म के ऊपर अमल करने के साथ साथ इत्तबाए सुन्नत का भी अहतमाम कर रहा था और दूसरे ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की तो अल्लाह ने उसको महरूम रखा। तो हकीकत तो यह है कि हम पढ़ने के ज़माने ही के अंदर सुन्नत की पैरवी का और उसके इत्तबा का अहतमाम करें, और ये चीज़ हमारे मिजाज में रच और बस जानी चाहिए, मदरसे के माहौल में भी ये चीज़ आम होनी चाहिए। आजकल क्या हो गया, हमारे मदारिस के अंदर कोई तालिब इल्म अगर सुन्नत सुन्नत की इतबा का अहतमाम करता है ना, तो वो नक्कू बन जाता है। नक्कू का मतलब यह है कि दूसरे तलबा उसकी वो टॉन्टिंग करते हैं, तानो तशनी करते हैं, बड़ा सूफी बन गया, ऐसा बन गया। बल्कि आजकल तो मामला अजीब हो गया, जो तालिब इल्म मेहनत से पढ़ता है, अमल का अहतमाम करता है, सुन्नत की पैरवी का अहतमाम करता है, उसके लिए मदरसे में रहना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। साथी भी चैन से नहीं बैठने देते, उसको सताते हैं। और साथी की बात तो साथियों की है, लेकिन असातिज़ा में भी बाज़ असातिज़ा वो होते हैं जो दर्स के दौरान जो है जुमले कसते हैं। हाँ, पहली सब में जाके नमाज पढ़ता है। अरे भाई, पहली सब में नमाज पढ़ने पर अगर असातिज़ा की तरफ से भी ताने सुनने पड़े, तो फिर ये मदरसा इस लायक नहीं है कि दुनिया के ऊपर वो बाकी रहे हैं। तो दुनियादार लोग जो दीन के दुश्मन है, वो तो ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर तानो तशनी और टॉन्टिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मदरसे में इत्तिबा सुन्नत के ऊपर ताने सुने जाएं, तो फिर वो मदरसा इस काबिल है कि उसका वजूद बाकी रहे। इसलिए हमें अपने मदारिस के माहौल को दुरुस्त रखने के लिए भी मेहनत करनी है। असातिज़ा से भी ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँगा कि आप चौकन्ने रहें, इस सिलसिले में तलबा की जहन साजी भी करते रहें, और ऐसे तलबा जो जो न तो कुछ करते हैं न कुछ दूसरों को करने देते हैं, उनके मुताबिक जो है हमेशा बाखबर और चौकन्ने रहें। उनको ऐसा मौका न दिया जाए कि जो दूसरे तलबा जो करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं, उनको परेशान करें। और ऐसे फिर क्या होता है, वो तालिब इल्म एक मरतबा एक तालिब इल्म एक मदरसे से निकल गया। मैंने उसको बुला करके समझाया, पूछा क्यों है, तो उसने वजह बताया। वो ज़हीन था, मेहनती तालिब इल्म था, नेक था। मैं कहा ये इसने मदरसा क्यों छोड़ा। कहा भाई, मुझे तो मेरे साथी क्लासरूम में चैन से बैठने नहीं देते, सताते हैं। तो आज क्या हो गया, ऐसे लोग उनको सताया जाता है, और जो बदमाश है जो अमल का अहतमाम नहीं करता, उसको कोई जुमला उस्ताद भी नहीं बोलता। उस्ताद भी डरता है उसको कुछ कहने से, साथी भी डरते हैं उससे। तो वहाँ ये मामला है, और इस बेचारे को सताते हैं। अब ये क्या हो गया, हमें अपने मदारिस के ऊपर नज़र सानी करने की ज़रूरत है। इसलिए असातिज़ा से भी अर्ज़ करूँगा कि वो भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करें, ख़ुद भी जो है नमाज बा जमात का, सफ़े अव्वल का, तकबीर उला का अहतमाम, सुन्नतों की पैरवी का अहतमाम, असातिज़ा तलबा से भी उसका अहतमाम। कोई भी कमी कोताही देखें फौरन टोकें, कोई पिटाई करने की कोई सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत से बुला करके कहा जाए, बेटा ये क्या है, पायजामा टखने से नीचे है, तो उसको बुला करके, भाई देखो ये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला अपनी नज़र रहमत से नहीं देखते, उसके लिए ये वईदे हैं। एक मरतबा आपने कहा, फिर वो आपके सामने तो कभी पायजामा टखनों से नीचे नहीं रखेगा, अगर होगा भी और आपको आता हुआ देखेगा तो ठीक कर लेगा, समझा क्या नहीं। और एक उस्ताद ने कहा यही काम दूसरा उस्ताद भी करेगा, तमाम असातिज़ा ये करते रहेंगे, इंशाअल्लाह उसकी वजह से ये इस्लाह वाले अमल को तरक्की मिलेगी, और हमारे मदरसे में दोनों एतबार से ऐसा माहौल कायम होना चाहिए जो मेहनत से पढ़ना चाहता है वो पढ़ सके, और जो अमल करना चाहता है उसके लिए भी अमल वाला माहौल मुहैया हो। यही हमारे असातिज़ा की जिम्मेदारी है, और तलबा को भी चाहिए कि अपनी इल्मी और अमली सलाहियतों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर नौ की मेहनत करें। यही ज़माना है, यहीं रहकर अगर आप ठीक बन गए तो आइंदा जाकर आपसे तवक्कु की जा सकती है। इसको उर्दू में मदरसे को कहते हैं मादर इल्मी, है ना, यानी आपके इल्मी वजूद को जन्म दिया, वजूद दिया किसने, इस मदरसे ने, यह आपकी इल्मी माँ है। तो जैसे हमारी माँ होती है वो हमारी मादर जिस्मी है, यानी हमारी जिस्मी माँ है, हमारा जिस्म उसके अंदर बना। और आप जानते हैं कि जो बच्चा जो ऐब माँ के पेट से लेकर के आता है ना, उस ऐब को कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी ठीक कर सकता नहीं है। कोई बच्चा पैदा हुआ कान नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो अब लोग कहें भाई ये तो पैदाइशी ऐब है, लोग जवाब ये देंगे, वह उसकी इस्लाह हो नहीं सकती। तो जो पैदाइशी ऐब आप इल्मी और अमली एतबार से मदरसे में से लेकर के जाएंगे ना, बाद में वो ठीक होने वाला नहीं है, याद रखियो। अगर मदरसे में आपने जमात के साथ नमाज पढ़ने का एहतमाम नहीं किया तो अब फरागत की बात, चाहे मेहनत से इल्म पढ़ा, खूब किताबें भी मेहनत से पढ़ी, इल्म भी मेहनत से पढ़ा, अव्वल नंबर आए, लेकिन जमात से नमाज पढ़ने की आदत नहीं बनाई तो क्या होगा नतीजा? पढ़ाई के बाद किसी मदरसे में आपको शेखुल हदीस भी अगर बना देंगे तो शेखुल हदीस बनने की वजह से आप बुखारी तो बहुत अच्छी पढ़ा देंगे, लेकिन जमात में वही कमजोरी रहेगी, जमात की शिरकत। आपके शागिर्द देखेंगे, हमारे उस्ताद माशाल्लाह किताब बहुत उम्दा पढ़ाते हैं लेकिन जमात में गड़बड़ है। इसको भले आपके सामने बयान न करें लेकिन उसको महसूस करेंगे अपने दिल में, आपस में उसका मुजाकरा करेंगे। जो देखो ये कमी पढ़ने के ज़माने से थी वो दूर नहीं होगी। इस ये तो अमली कमी की बात करता हूँ, यही हाल इल्मी कमी का है कि इल्मी एतबार से नव सर्फ फ़िका हदीस लुगत और इसी तरीके से तफसीर, ये मुख्तलिफ उलूम पढ़ाए जाते हैं। पढ़ने के ज़माने से अगर आपके इल्म नहव में कमी है और फ़नून में मेहनत की, अच्छी तरह अव्वल नंबर भी कामयाब हुए, लेकिन वो नहव वाली कमी जो आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो फरागत के बाद भी वो कमी आपकी जूं की तूं बाकी रहेगी। आप वो आपकी सलाहियतों की वजह से बुखारी पढ़ने को दे तो दी गई, लेकिन इबारत के दौरान कोई नहवी गलती होगी तो आपके शागिर्द महसूस करेंगे कि हमारे उस्ताद तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, हदीस बहुत अच्छी समझाते हैं, लेकिन इबारत में घोटाला हो जाता है। वो नहव के एतबार से एराब जो पढ़ना चाहिए वो बराबर पढ़ते, कभी गलती हो जाती है तो आपका ये ऐप खुल कर आएगा और ये चीज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, आपके लिए बहुत बड़ा ऐप है एक आदमी के लिए। इसलिए ज़रूरत, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो वक़ात, उसका जो एहतराम, उसका जो अदब और उसके मुताल्लिक दिलों में जो अकीदत पैदा होनी चाहिए वो होती नहीं। और यही चीज़ तलबा के लिए इल्म के आने के राह में, हासिल होने के राह में क्या बनती है, रुका तालिब इल्म के दिल में जब तक कि अपने उस्ताद की पूरी अकीदत और मोहब्बत न हो वहाँ तक इल्म आ सकता नहीं है, याद रखना। तो वह हमें, मैं असातिज़ा से कहूँगा कि हमें ऐसा नहीं, और आपको भी इसलिए कहूँगा, आपको भी आगे जा कर के यही काम करना है, तो हमारे अंदर ऐसी कमी और कोताही न हो जो आगे जा कर के तलबा के लिए उसूल इल्म की राह में रुकावट बने। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरु अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरदा बि अदद मा तुहिब्बु व तरदा। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو تو نے محض اپنے فضل سے، اپنے فیصلے سے یہاں تک پہنچایا ہے اور یہ اسباب و وسائل ان کے لیے مہیا کیے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرماتے ہوئے ان اسباب و وسائل کو عملی جامہ پہنا کر اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کا اہتمام کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما کر ان کو علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، اور ان سے ان کے ماں باپ، اساتذہ اور مربیوں نے جو امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں اللہ ان کے وجود کو اس سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اللہ اس مدرسے کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما, اس کے قائم کرنے والوں, چلانے والوں, پڑھانے والوں, پڑھنے والوں, تعاون کرنے والوں, تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما. ہر قسم کے شرور, فتن, آفات, بلیات, مکارے سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ, اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.